चरणों में बहुबार वंदना। कर्म कर्मयोग, भक्तिमय कर्मयोग पर चर्चा चल रही थी। आपने देखा एक सामान्य कर्म को कर्मयोग किस प्रकार से बनाया जा सकता है, उसे भक्तिमय कर्मयोग की संज्ञा किस प्रकार से दी जा सकती है। संक्षिप्तया आपने देखा होगा, कर्म जब तक अपने लिए किया जाता है, संसार के लिए किया जाता है, तो कर्म कहलाता है। परमात्मा के लिए किया जाता है, परमात्मा के बंदों के लिए किया जाता है, उसके दिए हुए दायित्व कर्तव्य को निभाने के लिए जो कर्म किया जाता है, उसे संत महात्मा एवं गीता जी कर्मयोग की संज्ञा देते हैं। जो कर्म करके अपने तन मन धन सहित बुद्धि युक्त होके, विवेक युक्त होके किए हुए कर्म को परमेश्वर के श्री चरणों में समर्पित कर दिया जाता है, वह कर्म भक्तिमय कर्मयोग कहा जाता है। आखिर आवश्यकता क्या है इस सारे झंझट की? क्यों कर्म को कर्मयोग बनाना है? क्यों कर्म को भक्तिमय कर्मयोग बनाने की आवश्यकता है? मान्यता तो यही है ना, जो कर्म राग द्वेष से प्रेरित होकर किया जाता है, जो कर्म क्रोध से प्रेरित होकर किया जाता है, जो कर्म अहंकार से प्रेरित होकर किया जाता है, जो कर्म लोभ इत्यादि इन विकारों से प्रेरित होकर किया जाता है, ईर्ष्या से प्रेरित होकर किया जाता है, वह कर्म हमारे बंधन का कारण बनता है। वह कर्म हमें जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं दिलाने वाला, वह कर्म हमें जन्म मरण के चक्कर में डाले रखने वाला कर्म है। इसके विपरीत यदि कर्म परमेश्वर से प्रेरणा पाकर कर्म किया जाए, परमेश्वर से प्रेरित कर्म है, परमात्मा से युक्त होके कर्म है, युक्त होके अर्थात रामकृष्ण परमहंस बड़े सुंदर उदाहरण देते हैं। अरे भाई, कर्म करने की युक्ति सीखने की आवश्यकता है। कर्म तो कोई संसार में छोड़ ही नहीं सकता। जैसे ही वह गर्भ में प्रवेश करता है तो कर्म का शुभारंभ हो जाता है, और जब तक शमशान भूमि चला नहीं जाता तब तक कर्म चलता रहता है। इसे छुटकारा नहीं है। सीखना है तो संसार में रहते कर्म किस प्रकार से करना है ये सीखना है। गीता जी भी यही सिखाती हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं, मुझे संस्कृत नहीं आती, मुझे गीता जी का भी नहीं पता क्या कहती है क्या नहीं कहती, पर मेरी जो माँ कहती है वह ये कहती है, कर्म करते हुए एक हाथ से परमात्मा के चरण पकड़ के रखो और दूसरे हाथ से कर्म करो। कर्म संपन्न हो जाए तो दूसरा हाथ भी परमात्मा के चरणों में लाके रख दो। मुझे तो इतनी ही युक्ति आती है, ऐसी ही युक्ति आती है कर्म करने की। ऐसा किया हुआ कर्म बंधन का कारण नहीं है, ऐसा कर्म तो मोक्ष का प्रदाता है, ऐसा कर्म तो प्रभु प्राप्ति देने वाला है। ऐसा कर्म आपको बंधन नहीं देने वाला, न ही वह सोने की जंजीर है और न ही वह लोहे की जंजीर है। जो कर्म राग द्वेष से प्रेरित होकर किए जाते हैं, सामान्यतः कर्म तो यही है। जो सामान्य व्यक्ति करता है उसके कर्म तो इसी तरीके से होते हैं, पक्षपात से प्रेरित होते हैं, अन्याय से प्रेरित होते हैं। एक जज साहब अन्याय करते हैं, राग द्वेष से यदि प्रेरित होकर कर्म करते हैं तो वह पक्षपाती हो जाएंगे, उनका जस्टिस जस्टिस नहीं रह सकता। ये कर्म में कर्म दोष है। मानो संत महात्मा ये स्पष्ट करते हैं, भाई ये सिद्धांत बड़ा अकाट्य है, जैसी करनी वैसा फल आज नहीं तो निश्चय कल, जैसी करनी वैसा फल आज नहीं तो निश्चय कल, ये आपको मिलते रहेगा। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, कर्म करो ऐसे भले जैसे फल की मांग। इक्षु रस की मधुरता, गन्ने के रस की मधुरता, इक्षु रस की मधुरता मिले ना वो कर भांग। स्पष्ट, जैसे आपको फल चाहिए वैसे ही आपको कर्म भी तो करने चाहिए। भक्तजनों, ये सिद्धांत हर एक पर लागू होता है। एक समाज से लेकर ऊपर तक, उच्च कोटि तक पहुंचा हुआ व्यक्ति, संतों महात्माओं पर इत्यादि इत्यादि सब पर यह सिद्धांत कर्म सिद्धांत जिसे कहा जाता है, ये सब पर लागू होता है। एक छोटी सी उदाहरण से देखें, एक राजकुमार की शादी तय हो गई है, शादी के लिए चला गया है। शादी संपन्न होने पर उसे अपने राज्य में वापस लौटना है। रात्रि का समय हो गया है लेकिन मुहूर्त ठीक नहीं, नगर में प्रवेश नहीं किया जा सकता। पंडित लोगों ने कहा है मुहूर्त ठीक नहीं है अभी, इसलिए नगर से बाहर ही एक आश्रम है, एक संत रहते हैं वहां, महंत रहते हैं वहां, उनका आश्रम है, वहां काफी सारे कमरे हैं। राजा ने सोचा सारी की सारी बारात को यहीं विश्राम दिया जाए। दूल्हा दुल्हन को एक कमरे में रख दिया गया, बाकी सबके रहने की व्यवस्था उचित जैसी हो सकती थी कर दी गई। सब प्रसन्न है, दूल्हा थका मांदा था, सो गया। दुल्हन को नींद नहीं आ रही, राजकुमार की पत्नी को नींद नहीं आ रही, क्या देखती है, मेरे पति के सिर के ऊपर एक बड़ी भारी तलवार लटक रही है, हीरे मोती जवाहरात बड़ी महंगी महंगी भारी चीजें अलंकृत हैं, उस पर जड़ित हैं। उस पर मन में जिज्ञासा उठी, ऐसा क्यों किया है और कितना का बोझ होगा। वो तलवार म्यान में से निकालने लगी, तलवार सीधी इतनी भारी थी, सीधी की सीधी पति की गर्दन पर कट गई। गर्दन पति मर गए, राजकुमार का देहांत हो गया, पत्नी देखते ही मूर्छित हो गई, पड़ी हुई है। सुबह कोलाहल मच गया, क्या हो गया, शक संत पर पड़ा, ये कोई लोभी है, ये महंत कोई संत कोई लोभी है, इसकी नजर मेरे राज्य पर रही होगी, इसलिए इसने राजकुमार की हत्या कर दी है। मिथ्या आरोप के कारण संत हैं, इसलिए फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। राजा ने हुक्म दिया, तत्काल उनके दोनों हाथ यहां से काट दिए गए। मेरे किसी कर्म का फल होगा, संतोष कर लिया, कोई परवाह नहीं, कर्म फल सहर्ष सहना साधना है, कुड़कुड़ के भी सहोगे आप कुछ नहीं कर सकते। संत महात्मा कहते हैं, अपने करने का जो फल है, जो मिलता है, जो भोग भोगने हैं, कर्म फल जिसे कहा जाता है, सुख है या दुख, वियोग है हानि है, किसी भी फॉर्म में जो भी आपको ये भोग आता है, इसे जो सहर्ष भोगता है, इसे साधना कहा जाता है। ये साधना है, कुड़कुड़ के नहीं, परमात्मा का लाख लाख शुक्र करके अपने कर्म भोगों को भोगिएगा। यदि व्यक्ति कर्म करते हुए कतराता नहीं है तो कर्म भोगते हुए क्यों रोए। सोचने का वक्त तो वह है जिस वक्त आप कर्म करते हो, जब कर्म करते हुए लज्जा नहीं आई, कर्म करते हुए आदमी कतराया नहीं, कर्म करते हुए उस वक्त मन में विवेक नहीं आया, अब कर्म भोगते हुए क्यों रोते हो, क्यों चलाते हो। सहर्ष स्वीकार कर लिया, मन में जिज्ञासा, मुझे पता नहीं लग सकेगा ये मेरे किस कर्म का भोग है जो मुझे ये सजा मिली है, मैं निरपराधी हूं, निर्दोष हूं, मेरा कोई दोष जिसके लिए मुझे सजा मिली है वह कर्म मैंने नहीं किया। अवश्य कोई पिछला कर्म होगा जिसकी सजा, जिसकी भुगतान, जिसका मुझे भुगतान अभी भुगतना पड़ रहा है। किसी महापुरुष से पूछना चाहिए, बाहर रहना भी उसका मुश्किल हो गया। लोग गाली गलौच निकालते हैं, मिथ्या आरोप लगाते हैं, आलोचना करते हैं, छोड़ के काशी चले गए। एक मित्र महात्मा थे, ज्योतिषी भी थे, उनके घर का पता था, काशी में उनके घर चले गए। घर जाकर द्वार खटखटाया, मित्र घर पर नहीं थे। घर पर नहीं थे तो पत्नी ने द्वार खोला, पूछा, मैं अमुक व्यक्ति हूं, मेरे मित्र हैं, आपके पति कहां हैं? पति का नाम सुनते ही वह आग बबूला हो गई। आगे है पति का पूछने के लिए, मैंने पति का ठेका ले रखा हुआ है। बड़ी कर्कशवाणी में वह महिला बोली, बता भी दिया, अमुक घाट पर, गंगा जी के अमुक घाट पर बैठे होंगे, वहां जाकर मिल लीजिएगा। आ जाते हैं, बेबक सो रही थी, आराम कर रही थी, इत्यादि इत्यादि कटु शब्द, कठोर शब्द का प्रहार कर दिया उस महात्मा पर। बेचारे मुंह लटका के गंगा के किनारे चले गए, जाके अपने मित्र से मिले। महात्मा जी, एक काम से आया हूं, पर इससे पहले कि मैं अपना काम कहूं, आप मुझे ये बताइएगा, आपकी पत्नी को आपके साथ रहते हुए कितने वर्ष हो गए होंगे? कहा, 30 वर्ष 35 वर्ष। इतने उच्च महात्मा होते हुए, इतने विद्वान होते हुए, इतने बड़े पंडित होते हुए, इतने बड़े ज्योतिषी होते हुए, आप अपनी पत्नी का स्वभाव नहीं बदल सकते? नहीं भाई, नहीं बदल सका। क्यों? इसलिए कि ये मेरे कर्मों का फल है। कैसे? मैं अपनी कथा सुनाती हूं, कहने लगे कि मेरी पत्नी जो इस जन्म की है, ये पिछले जन्म में गधी थी, पर मैं कौवा, इस गधी के शरीर पर अनेक छोटे छोटे जख्म थे, मैं अपने स्वभाव के अनुसार उन जख्मों पर चोंच मारता, जख्म और बढ़ जाते, दर्द भी होती होगी, पर मैं कोई द्वेष के कारण या वैर के कारण, शत्रुता के कारण ये चोंच नहीं मारता था। मेरा स्वभाव है चोंच मारना, इसलिए मैं चोंच मारता था, एक उस बेचारी को दर्द होता होगा। एक दिन करते करते ऐसा हो गया, मैंने इतनी जोर की चोंच मारी कि मेरी चोंच हड्डी में जाकर फंस गई। जख्म इतना गहरा था, मेरी हड्डी में चोंच फंस गई जाके तो निकले ना। गधी बहुत तड़प रही है, मैंने मुश्किल में कि मेरी चोंच फंस गई हुई है, मैं निकल नहीं रही। गधी चलते चलते हिम्मत करके गंगा जी में प्रवेश कर गई। मुझे भी गंगा जी में जाना, मेरी चोंच फंसी हुई है, मैं किसी भी ढंग से निकाल नहीं सकता था। दोनों की मृत्यु हो गई। श्रीमान कहते हैं, गंगा में प्रवेश हुआ, गंगा में मृत्यु हुई, इसलिए पशु योनि से, पक्षी योनि से निकल के तत्काल हमें मानव योनि मिल गई। गंगा मां में स्नान करने का प्रताप तब की बात है, ये बताते हैं वे। मैं पंडित बन गया, वह पंडितानी बन गई। इस वक्त जो मैं कर्म भोग हो रहा हूं, वह वही वाणी की चोंच मुझे मार रही है। जो कि तुम सुन के आए हो, मुझे 30-35 वर्ष हो गए हैं सुनते सुनते, कि मेरे अपने कर्मों का फल है। ठीक बात है महाराज, सही बात है, ऐसा ही होता है। लेकिन ये अगले का बदला यदि चलता रहे, समझदारी, विवेक, साधना तो यही है कि इस क्रम को, इस क्रिया को, प्रतिक्रिया को बंद कर दिया जाए। आज आप कुछ भोग रहे हैं, आप उसका बदला लेने के लिए मैं देखूंगा, मैं करूंगा, आप कुछ करते हैं, तो ये क्रम कभी बंद नहीं होने वाला, ये चलता रहे, ये जन्म मरण का चक्कर छूटने नहीं वाला, ये चलता रहेगा। समझदारी इसी में है, उसे चुपचाप कर्म फल भोग समझ के तो सहन कर लीजिएगा, चक्कर समाप्त हो जाएगा। आपके बाजू कटे हैं, इसके लिए महाराज आप याद कीजिएगा, आप अपने पिछले जन्म में एक बहुत बड़े ब्रह्मचारी तपस्वी थे, निर्जन स्थान पर रहा करते थे आप, वन था, छोटी सी आपकी कुटिया, बड़े आनंदित रहते थे। एक दिन क्या हुआ, आपकी कुटिया के आगे से एक गाय निकली, भागती भागती जा रही है। आप ध्यानस्थ हैं, फिर भी आपको पता लग गया है कि मेरे आगे से कोई पशु निकला है। आपने आंख खोल के देखा, गाय फिर बंद कर ली आंख। पीछे पीछे से एक व्यक्ति आया है भागता भागता। उसने पूछा, महात्मा जी आपने कोई गाय इधर जाती हुई देखी है? मुख में जाप चल रहा था, ध्यानस्थ थे आप, आपने इन्हीं दोनों हाथों से इशारा करके कहा था कि भाई इधर को गई है। वह आदमी कसाई था, उसने गाय को मार डाला। उसी करने का फल है आज आज आपके हाथ। स्वामी जी महाराज ने फरमाया ना, कल अपनी प्रेरणा से या किसी अन्य की प्रेरणा से जो कर्म किया जाता है उसे कर्म किया कर्म कहा जाता है। आप अपनी प्रेरणा से कर रहे हैं या किसी अन्य की प्रेरणा से कर रहे हैं, कर तो आप ही रहे हैं, इसलिए आप ही उन कर्मों के करता है, और आप ही करता है तो आप ही उस कर्म के भोगता भी। ये सिद्धांत यदि इतना अकाट्य है तो परमात्मा की कृपा का क्या स्थान है? क्यों पढ़े अमृतवाणी, क्यों करें जाप, क्यों जाऊं जाए संतों महात्माओं की शरण में? भक्त वत्सलता क्या कहती है? शरणागत वत्सलता का क्या अर्थ है? यदि परमात्मा एक जज ही है तो हमें हमारी करने का फल ही देने वाला है, तो आदि भक्ति किस लिए करे? ये तो सब निरर्थक। क्या आवश्यकता है भक्ति करने? है भक्तजनों, जज साहब तो सजा दे सकते हैं, भगवान जज नहीं है। भगवान बिल्कुल जज नहीं है, भगवान तो क्षमावान है, वह क्षमा का दाता है। एक संसारी जज सजा दे सकता है, वह क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा का अधिकार राष्ट्रपति को है, वो भी तब जब कोई उसके पास जाके अपील करता है, अन्यथा अनेकों को फांसी की सजा होती है। यदि कोई जाके राष्ट्रपति के साथ पास जाके अपील नहीं करता तो उसकी फांसी की सजा बड़ी रहती है, मुक्त नहीं होता। परमात्मा का हिसाब किताब भी बिल्कुल इसी तरह का है। आप शरणागत हो गए हैं तो आपके कर्म भोगों को क्षमा मिल सकती है। आप भक्त बन गए हुए हैं, आपने अपने आप को परमेश्वर से युक्त कर लिया हुआ है, तो पहाड़ जैसी वो मुसीबत जो आपके ऊपर आने वाली थी, टूटने वाली थी, एक सुई नोक कांटे की नोक मामूली सी दर्द देते तो वह मुसीबत टल जाती है। ये परमेश्वर की कृपा है, मत सोचिएगा ये मात्र सिद्धांत ही है, नहीं, ऐसे प्रमाण है। परमेश्वर की भक्ति करने वाले को बहुत कुछ मिल जाता है, संत शरण में जाने से बहुत कुछ कट जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। बोझ हमारे ऊपर इतना है कि वह हल्का भी होता है तो इतना कम हल्का होता है कि हमें पता नहीं लगता, पर हल्का होता। मामूली सा बुखार चढ़ता है, रोग आता है, टाइफाइड फीवर होता है, मानो कोई एक कर्म भोग उसका भुगतान हो गया, उसके बाद भूख ज्यादा लगती है। क्यों? एक कर्म का बोझ हल्का हो गया। संतों महात्माओं के पास जाते हैं, परमात्मा के चरण शरण में जाते हैं, शांति का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। क्यों? कर्मों का बोझ हल्का हो गया। पर बोझ इतना होता है या और बोझ इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि वह आनंद थोड़ी देर के लिए ही होता है, क्षण भंगुर होता है आनंद। जितने दिन यहां हैं बहुत आनंदित रह रहे हैं, संसार की याद नहीं आ रही, पत्नी की याद नहीं आ रही, दफ्तर की याद नहीं आ रही, व्यापार की याद नहीं आ रही, बच्चों की याद नहीं आ रही, मानो परमानंद में निमज्जित है, ड्राउंड इन परमानंद, निमज्जित है, परमानंदित है। क्यों? कर्म भोज हल्का हो रहा है, दुख देने वाले कर्म अपने आप कट रहे हैं। अंगुलीमाल एक बड़े प्रसिद्ध धातु हुए हैं महात्मा बुद्ध के समय, नाम अंगुलीमाल इसलिए रखा गया है, प्रण ले रखा हुआ था प्रतिदिन एक व्यक्ति की हत्या करूंगा, हत्या करने के बाद उसकी एक ये उंगली निकालूंगा, उसका हार बनाऊंगा, 1000 उंगलियों का हार बना के तो मां भद्रकाली के गले में डालूंगा। इसलिए इस प्रसिद्ध डाकू को अंगुलीमाल कहते। 999 उंगलियां हो चुकी हैं, हार पूरा होने वाला है, एक ही उंगली चाहिए। महात्मा बुद्ध को पता लगता है ये इतना प्रसिद्ध डाकू है, इतना खूनखार डाकू है, चलें ऐसे व्यक्ति के दर्शन करने चाहिए, ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए। महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल को मिलने के लिए चले गए। ये ढूंढ रहा है, अंतिम व्यक्ति चाहिए इसे आज मारने के लिए, एक ही उंगली की जगह रह गई हुई है हार में, हार पूरा होने वाला है, कोई है? महात्मा बुद्ध निर्भीक होके, बिल्कुल निडर होके वन में जहां ये डाकू रहता है पूछते हैं कोई है। तत्काल धारियों के पीछे से छिपा हुआ एक खूनखार व्यक्ति, अद्भुत सी शक्ल उसके, ऐसा व्यक्ति सामने आ गया है। कौन है आप? मैं आपको प्रणाम अर्ज करता हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा आप मुझे प्रणाम करो या कुछ करो, पर मैं तो तेरी हत्या करूंगा, मुझे एक उंगली चाहिए। हत्या करने से पहले अंगुलीमाल, मुझे पता लग गया कि तू अंगुलीमाल है, हत्या करने से पहले एक मेरा काम कर, उस सामने पेड़ है उससे दो पत्ते मुझे उखाड़ के ला दे।